विभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello, Akarshita. Hello and good afternoon to all our listeners. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Akarshita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। श्री मोदी ने आज स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू एड्रेस ओडिशा असेंबली दिस इवनिंग।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया, कहा जीएसटी सुधारों से अमरीकी टैरिफ का असर कम हुआ।
6.6 magnitude earthquake strikes Indonesia's Sumatra Island.
और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का समापन आज शाम नई दिल्ली में।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about tribal art showcased at the India International Trade Fair. Well, the curtains for this year's India International Trade Fair, IITF, will come down today. The 14-day mega global trade event that commenced at Bharat Mandapam in New Delhi on the 14th of this month showcased India's rich diversity across its states.
सरकार ने कहा है कि उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों की बढ़ी भागीदारी व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक वैश्विक मंच के रूप में आईआईटीएफ का विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 विजन से प्रेरित और एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आधारित आईआईटीएफ भारत की सांस्कृतिक और शिल्प विरासत की एक विस्तृत गाथा प्रस्तुत करता है।
Yes, and organized by the India Trade Promotion Organization, IITF is one of India's most significant platforms for MSMEs, artisans, startups and industries to connect with buyers and expand their market reach.
नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 44वें संस्करण में भारत की जनजातीय कलाओं की छोटी बड़ी लेकिन जीवंत दुनिया सुदूर गांव से बाहर निकलकर सुर्खियों में आ गई है।
Yes, absolutely. And the fair is giving 700 plus tribal groups who together form nearly 8.6% of India's population a stage to show off the ancient crafts and traditions.
और अभिषेक, हाथ से बुने कपड़ों से लेकर स्कॉल पेंटिंग तक, धातु से बनी मूर्तियों से लेकर दर्पण काम वाले परिधानों तक आदिवासी विरासत का पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक हर एक राज्यों से कितनी नई उभरती जो है प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, कितनी अलग किसी के शीशे से बने जो है साड़ियां बनाई जा रही हैं, कोई जो छोटे छोटे स्टोन से जो है बहुत ढेर सारे नेकलेस, ब्रेसलेट्स, मतलब ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें जो हम एक संस्कृति के रूप में ही एक मनाते हैं।
Yes, and the best of each and every state is on display here at the trade fair. And if I tell you about the vibe, Akarshita, it's all about the rich colors and centuries old techniques where you meet the artisans, the real people with real stories. Take Sachin Wake from the Gond tribe in Nagpur. His family works end to end from raising tassar silkworm cocoons to weaving beautiful silk saris with age old warli and karvat motifs. He says, from collecting the cocoons to weaving the silk cloth to making the final product, we do it all.
जी हां, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के सहयोग से उन्हें आईआईटीएफ में एक स्टॉल मिला, जिससे उन्हें स्थानीय मेलों से परे खरीददारों तक पहुंचने में मदद मिली। ये संगठन ज्ञान, औजारों और व्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से आदिवासियों को सशक्त बनाता है। जो कभी एक छोटे कारीगर का सपना था, उसे अब राष्ट्रीय मंच पर चमकने का एक अवसर मिला है। और अभिषेक, अगर बात करें तो पहले वो अपने गांव, कस्बों, छोटे छोटे जगहों पर अपनी स्टॉले लगाते थे, बेचते थे, लेकिन आज उन्हें एक बहुत बड़ा मंच मिला है आईआईटीएफ के जो है
प्लेटफॉर्म। इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्किल्स एंड देयर। लेट्स आल्सो टेक द एग्जांपल अगरशिता ऑफ झांटू गोपे फ्रॉम झारखंड। ही प्रैक्टिसेस पेथकर, अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फुल ऑफ स्क्रॉल स्टाइल पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट ट्राइबल मिथ्स, डांसेस एंड फोकलोर।
ये प्राचीन कथात्मक कला तेजी से लुप्त होती जा रही है, क्योंकि कम परिवार ही इसे अपना रहे हैं, लेकिन स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से गोपे इसे जीवित रखे हुए हैं और आईआईटीएफ में इसे गर्व से प्रदर्शित भी कर रहे हैं। झारखंड से आए एक प्रदर्शक ने पैदकर चित्रकला के अनूठी शैली के बारे में बताया।
मेरा नाम हुआ गणेश गायन, ग्राम अमाडोबी, धालबमगढ़, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड। हम जो पेंटिंग बनाते हैं उस पेंटिंग का नाम है पैटकर पेंटिंग्स। पैटकर पेंटिंग्स यानी पटचित्र पेंटिंग्स स्क्रॉल में बनता था, जो हमारे दादाजी लोग बनाते थे, उससे हमने सीखा। ये हम लोग का परंपरागत आर्ट है। इस कला के अंदर, सारा पेंटिंग्स के अंदर एक अलग अलग स्टोरी होता है, जैसे आदिवासी लोगों का जन्म वृत्तांत से लेके आज तक का पूरा, या फिर भगवान श्री कृष्ण का, या नरमेध यज्ञ, अलग अलग स्टोरी के ऊपर हम लोग बनाते हैं। और हम लोग जो कलर्स इसमें यूज करते हैं वो भी सारा नेचुरल कलर्स यूज होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि स्टोन्स है, इसको हम लोग घिसते हैं चंदन जैसा, घिसने के बाद जो कलर निकलता है उसके साथ नीम या बबूल का गोंद मिलाते हैं। नीम या बबूल का गोंद मिलाने के बाद उसको उबालते हैं और फिर पका के जो पका हुआ कलर बनता है उससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, ताकि वो कलर छूटे ना। इसमें हाथ देने से रफ टाइप का लगेगा लेकिन छूटेगा नहीं कलर। यही हम लोग का पेंटिंग है, जिसको पैटकर पेंटिंग कहा जाता है। पैटकर पेंटिंग और सोहराय पेंटिंग में डिफरेंस ये है कि पैटकर पेंटिंग में हर एक पेंटिंग में अलग अलग स्टोरी होता है। सोहराय पेंटिंग में एनिमल्स वगैरह एक डिजाइन होता है, जो कि काली पूजा के समय में बनाते हैं उन लोग। और देखा जाए तो जो इसमें कलर यूज करता है सोहराय पेंटिंग्स में, वो भी नेचुरल कलर से, वो मिट्टी का बना होता है। और हम लोग जो कलर्स बनाते हैं वो भी नेचुरल से, जो कि स्टोन से बना होता है। उसमें एनिमल्स और मोर, हिरन इत्यादि आदि बनते हैं, और हम लोग में ह्यूमन एंड मैन फिगर ज्यादा बनता है। यही अंतर है।
गुजरात की उगम्बेन रमाबाई सुथार उन सैकड़ों महिलाओं में से एक हैं जो अभी तक सिर्फ आसपास के स्थानीय बाजारों में ही हाथ से बने शीशे के काम के कपड़े बेचा करती थी। अब आईआईटीएफ जैसे मेलों और ट्राइफेड के सहयोग से उनकी पहुंच देश भर के खरीदारों तक है। एक ऐसा बदलाव जो आजीविका में बदलाव ला रहा है। और अगर बात करें अभिषेक, तो ये आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के रूप में एक बड़ा कदम है कि किस तरीके से स्थानीय कारीगरों को इतने मौके मिल रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय, एक तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय मंच ही हुआ, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो उनके साथ
इज जस्ट अमेजिंग दैट द आर्टिजंस फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया कैन कम टू द national stage and showcase the products which they have very lovingly produced, and that too at such a unique platform. I think it's absolutely amazing, isn't it?
और ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य तक सीमित थी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वहां के जो परिधान है, लखनऊ के बहुत ढेर सारे ऐसे कपड़े होते हैं, या आप सिल्क की बात करें जो दक्षिणी जो है राज्यों में होते हैं, और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का है, बहुत ढेर सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं। अब सब कुछ एक जगह पे आ रहा है और जो खरीदार है उनको एक ही जगह पे मिल रहा है।
Yes, absolutely, and that is not all, Akarshita. This isn't just a fair or a one-time exhibition. It's part of a bigger effort to preserve India's cultural roots and uplift communities economically by providing them a national platform, like I was just mentioning a little while earlier, Akarshita. And these artisans get real market access rather than struggling to find buyers in remote villages. The unique art forms, many centuries old, get a chance to survive, evolve, or even revive.
और जो हमारे अभिषेक पारंपरिक कला है वो विलुप्त होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो उनको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको जीवित करने का, सजोने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से आज एक हमारे पास एक कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूर के विशाल बागमारी की। वे अपनी पारंपरिक कला भरेवा को संरक्षित कर रहे हैं। बागमारी कबाड़ धातु से आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियां और आभूषण बनाते हैं। भरेवा गोंड जनजाति की एक उप जनजाति है जो मध्य भारत में फैली हुई है और इसे लुप्त प्राय कला का आभास कराती है। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो लुप्त प्राय होती जो है कलाएं हैं हमारे भारत की, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को दर्शाती हैं, उन्हें भी ये सहेजने का सजोने का काम कर रहे हैं।
Absolutely, and as the country marches towards becoming a $5 trillion economy by 2047, Agarsita, promotion of India's tribal art and the handicrafts ensures that these age-old traditions survive the test of time and contribute to the inclusive socio-economic development of India. And our correspondent reports that the fair highlighted the cultural and economic strength of a united India.
This year's fair, held at Bharat Mandapam, witnessed a strong turnout with thousands of visitors, entrepreneurs, international delegates making their way through the exhibition halls. The 14-day event showcased India's rich diversity across its states. Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh were the partner state for this year's edition, while Jharkhand was the focus state. Nearly 30 states and union territories and over 60 ministries participated in the fair. One of the central attractions of the fair was the Digital Indian Pavilion, which showcased the country's digital transformation journey. Various tribal groups from across the country also exhibited their work to a wider audience, promoting the nation's tribal heritage. The trade fair provided a major platform for domestic and international trade, promoting business to business and business to consumer linkages. With Shivang, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
और यही नहीं अभिषेक, ग्रामीण महिलाओं को भी आईआईटीएफ से बहुत मदद मिल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आईआईटीएफ में आयोजित सरस आजीविका मेले ने ग्रामीण महिलाओं को अपनी कला, कार्य और हस्त निर्मित सपनों को दुनिया के सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान किया है।
एंड स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू आकाशवाणी न्यूज, गर्वा निर्मला फ्रॉम गुजरात थैंक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द सर्ज इन सेल्स।
मैं भूज कच्छ गुजरात से आई हुई हूँ और मैंने अपने मोडाल का जो कपड़ा है वो यहाँ बेचने के लिए आई हूँ। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम महिलाओं को कमाने का तक देता है।
आकर्षिता, इन शॉर्ट IITF इज वेयर आर्ट मीट्स पर्पस।
तो कल्पना कीजिए कि आप मेले की दुकानों से गुजर रहे हैं। आप एक गोंड परिवार द्वारा बुनी गई चमकदार रेशमी साड़ी और पुरानी आदिवासी कहानियों को बयां करती एक स्क्रॉल पेंटिंग, गुजरात की महिला कारीगरों द्वारा सिले गए शीशे के काम वाले कपड़े और मध्य प्रदेश की एक शिल्पकार द्वारा आकार की गई धातु की मूर्तियां देखते हैं। आपको yes. एक ही स्थान पर इतना कुछ देखने को, खरीदने को मिल रहा है।
Isn't it amazing? Each piece tells a story of heritage, sweat and dreams of a beloved India. At the IITF, India's rich tribal art forms have been honored to commemorate Ek Bharat, Shrestha Bharat, that is One India, Great India. And this is not just nostalgia for the past, it's a living, breathing future where age-old traditions find new respect, new homes and new customers.
और हम अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि आज तो अंतिम दिन है IITF का, तो वो जाएं, कुछ खरीदारी करें, क्योंकि इससे क्या है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, हमारी जो सभ्यता है उसको बढ़ावा देंगे और कहीं ना कहीं कारीगरों को समर्थन मिलेगा। जो छोटे कारीगर हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको समर्थन मिलेगा और जहां हर खरीदारी उन संस्कृतियों के स्मरण और समर्थन का एक छोटा सा कार्य बन जाती है और उसमें हमारा भी योगदान होगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक ऐसा स्थान है जहां वर्षों की साधना, पारिवारिक परंपराएं और सामुदायिक पहचान दुनिया के सामने आ रही हैं।
Yes, and behind every stall is a story. The early morning loom work, the carefully packed cartons that travel miles, the hope that a new buyer might help sustain an art form for another generation. And Akarsita, I hope you did visit the India International Trade Fair.
जी.
Even if you didn't, I hope next year you will do the needful.
Sure. तो आज शाम को जब मेला स्थल तैयार हो रहा है तो जो बात शेष रह गई है वो ये है कि याद दिलाती है हमें कि भारत की ताकत अनेक संस्कृतियों, अनेक भाषाओं, अनेक हाथों के सहज सम्मिलन में निहित है, जो एक साझा पहचान का निर्माण करती है और हमें सशक्त बनाती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में आज कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इफ्फी में आज सुबह गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महान छायाकार और फिल्म निर्माता के वैकुंठ के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर श्री वैकुंठ की 1977 की वृत्त चित्र गोवा मार्चेस ऑन भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि श्री वैकुंठ ने भारतीय सिनेमा पर अपनी छाप तब छोड़ी जब गोवा फिल्मों से जुड़ा नहीं था।
इन द 1940s के वैकुंठ जी गोवा के लोग कभी सोचते भी नहीं थे तब सिनेमा के बारे में, तब जाके उन्होंने इतना बड़ा काम इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में किया और आज गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनके नाम पे ये आज स्टैम्प रिलीज होना गोवा सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा के लिए वैकुंठ जी का नाम ये पूरे देश भर में फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाएगा।
और हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज कई शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हो रही है।
इफ्फी में आज दर्शकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाली फिल्मों में पोंकू, अमरिम, क्लाउडिया, कॉटन क्वीन, अपोइट, शाम और गीतांजलि शामिल रही। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा से जेम्मा ब्लास्को द्वारा निर्देशित स्पेनिश ड्रामा फिल्म फ्यूरी का आज निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म श्रेणी में प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा पेरू की फिल्म पंकू और कोलम्बियाई फिल्म ऑरिचेल्स का एशियाई प्रीमियर भी किया गया। आज रेड कार्पेट सुबह से जाने माने फिल्मकारों से सजा हुआ है। एक संवाददाता सम्मेलन में ओटीटी सिनेमा के वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सत्र के दौरान प्रसिद्ध अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आज उभरते कलाकारों के लिए न केवल नए दरवाजे खोल रहे हैं बल्कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओटीटी ने कंटेंट की विविधता को बढ़ावा दिया है जिसके चलते छोटे शहरों और अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले कलाकारों को पहचान मिल रही है। उधर कला अकादमी में अभी फिल्म निर्माण के रचनात्मक, आलोचनात्मक और तकनीकी आयामों पर गहन और व्यापक चर्चा हुई। आज दोपहर बाद बहुप्रसिद्ध फिल्म शोले के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में मशहूर फिल्मकार और शोले के निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने शामिल होकर फिल्म से जुड़े अनेक रोचक अनुभव, इसकी रचनात्मक यात्रा और पर्दे के पीछे की कहानियां लोगों के साथ में साझा की। इस अवसर ने न केवल भारतीय सिनेमा की इस ऐतिहासिक फिल्म को याद करने का एक अवसर दिया बल्कि इसके निर्माण प्रभाव और विरासत पर गहन चर्चा का मंच भी लोगों को प्राप्त हुआ। आज शाम कला अकादमी में बहुप्रतिष्ठित अभिनेता आमिर खान एक विशेष संवाद सत्र में दर्शकों के सामने होंगे। इस अवसर पर वे अपने फिल्मी सफर, रचनात्मक प्रक्रिया और बदलते भारतीय सिनेमा पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को उनके साथ सीधे संवाद करने, प्रश्न पूछने और उनके अनुभवों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने आज जम्मू कश्मीर के चुनिंदा शिल्पकारों को वर्ष 2024 के लिए वार्षिक केंद्र शासित कारीगर पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, हु इज आल्सो मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड द कोवेटेड अवार्ड्स एट द पिक्चरिस्क शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिस आफ्टरनून। 20 आर्टिजन्स एंड वीवर्स फ्रॉम कश्मीर एंड 18 फ्रॉम जम्मू डिवीजन वेयर कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूटी आर्टिजन अवार्ड्स इन डिफरेंट नोटिफाइड क्राफ्ट्स। दीज आर्टिजन्स हैव केप्ट द फेम्ड हैंडक्राफ्ट्स लेगेसी अलाइव इन जम्मू एंड कश्मीर। टॉकिंग टू परिक्रमा, डायरेक्टर ऑफ हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर, मुसर्रत इस्लाम सेड,
मुझे बहुत है कि आज इनको कैश प्राइजेस भी दिए गए। फर्स्ट प्राइस जो है वो 50,000 का, सेकंड 30,000 का और तीसरा प्राइस जो है वो 20,000 का है। बेसिकली ये एक अटेम्प्ट है डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का, टू रिकॉग्नाइज द वाइटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टिजन एंड वीवर इन कीपिंग आर आर्टिस्टिक एंड क्राफ्ट लेगेसी अलाइव।
आइडेंटिफाइंग वेलफेयर ऑफ आर्टिजन्स एंड वीवर्स एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, द कोवेटेड एनुअल आर्टिजन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ artisan community who toil hard to keep the handicrafts heritage alive in Jammu and Kashmir. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फुटबॉल में भारत ने कल अहमदाबाद के इका एरिना में एएफसी अंडर 17 एशियाई कप 2026 क्वालिफायर ग्रुप डी के मैच में चीनी ताइपे को 3-1 से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत की ये पहली जीत है। भारत का अगला मैच कल लिबनान से होगा।
And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty extended the gains for the second consecutive day, closing in positive territory today. The markets opened on an upbeat note and reached a new all-time high during intraday trading, marking a milestone after 14 months. The Sensex hit a record high of 86,056, while the Nifty touched 26,310 mark. However, the indices experienced a brief pullback into negative territory during the day, reflecting some mid-session volatility for some time, but rebounded in the last hour of trade. The Sensex advanced 111 points to close at 85,720, while the Nifty added 10 points to settle at 26,216.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember freedom fighter and first speaker of Lok Sabha, Ganesh Mavalankar, who was born on 27th of November 1888. As speaker of the first Lok Sabha of a newborn nation, Mavalankar's role was not merely that of a moderator and facilitator of its proceedings, but of a statesman. And a founding father invested with the responsibility to establish rules, procedures, conventions and customs that suited the ethos of India.
Born in Baroda, Gujarat, Mavalankar was a lawyer by profession and also took keen interest in social work, which brought him in contact with eminent national leaders like Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi. He played an active role in the freedom movement in Gujarat and was imprisoned several times and spent nearly 6 years in jail.
Mavalankar dedicated himself to the affairs of Ahmedabad municipality for nearly two decades and was elected to the then Bombay Legislative Assembly representing the city of Ahmedabad in 1937. He was elected to preside over the Central Legislative Assembly in 1946.
Mavalankar was elected to the office of Speaker of the Constituent Assembly Legislative on the 17th of November 1947. And with the adoption of the Constitution of Free India on the 26th of November 1949, Mavalankar became the Speaker of the Provisional Parliament and continued to occupy the office of the Speaker till the first Lok Sabha was constituted in 1952.
During this time, Mavalankar ensured that all the rules, practices, procedures and conventions necessary for the smooth functioning of a representative parliament in the country were put in place before the elections to the first Lok Sabha were completed in the country in 1951-52. No one was therefore surprised when Mavalankar was chosen as the Speaker of the first Lok Sabha of independent India on 15th of May 1952.
During his tenure as a Speaker of Lok Sabha, Mavalankar introduced several new rules and procedures and also modified the existing ones to suit the new conditions. On his initiative, the question hour became a regular and meaningful feature of parliamentary sessions. Devices like short notice questions and half an hour discussions were introduced to make the government truly accountable to the parliament.
The discussion on president's address on a motion of thanks was started by him to ensure independence and supremacy of parliament in the system of government. Mavalankar envisioned an independent secretariat of parliament directly under the control of the presiding officer.
Mavalankar's speakership was cut short abruptly by his untimely death on the 27th of February 1956 in Ahmedabad. Through 5 decades of selfless service, Ganesh Vasudev Mavalankar has left a deep imprint of his personality on the office of the Speaker and on the Parliament of India. We salute this great Indian.
Today, we also remember renowned Hindi poet Harivansh Rai Bachchan, who was born on 27th of November 1907.
अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला।
जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आज हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की जयंती है। इनकी प्रसिद्धि इनकी कृति मधुशाला के लिए अधिक है।
Yes, and Ustad Sultan Khan passed away on this day 2011. He was a sarangi player and a classical vocalist belonging to the Sikhar Gharana, and he was one of the founding members of the Indian fusion group Tabla Beat Science with Zakir Hussain and Bill Laswell. He was awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor in 2010. Let's listen in to a hit song of his.
आज भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक सैयद मोहम्मद अजीज अन्नबी की पुण्यतिथि है। उन्होंने मुख्यतः बंगाली, उड़िया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने कोलकाता के गालिब रेस्टोरेंट में एक गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1984 में वे मुंबई आए थे। उनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई। मोहम्मद अजीज ने पहली बार अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से अजीज साहब ने ही गाया था, जिसे अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री नीलम पर फिल्माया गया था।
Yes, and Bruce Lee was born on this day, 1940. He was a Hong Kong-American martial artist, actor and filmmaker. He was the founder of Jeet Kune Do, a hybrid martial arts philosophy, which was formed from Lee's experiences in unarmed fighting and self-defense, as well as eclectic Zen Buddhist and Taoist philosophies as a new school of martial arts thought. With a film career spanning Hong Kong and the United States, he is one of the most influential martial artists in the history of cinema. And known for his roles in 5 feature-length martial arts films, Lee is credited with helping to popularize martial arts films in the 1970s and promoting Hong Kong action cinema. And also, I think Bappi Lahiri was born on this day in 1952. Also known as Bappi Da, he was a singer, composer and record producer. He popularized the use of synthesized disco music in Indian music industry and sang some of his own compositions. Let's listen in to a hit track of his.
Dil mein ho tum, aankhon mein tum, bolo tumhe kaise chahun. Dil mein ho tum, aankhon mein tum, bolo tum.
Sone ke gehnon se lade Bappi Lahiri ke sangeet mein agar disco ki chamak damak nazar aati to unke kuch gaane saadgi aur gambhirta se paripurn bhi hote. और बप्पीदा के नाम से मशहूर बप्पी लाहड़ी ने सन 1970 से 1990 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा को आई एम अ डिस्को डांसर, जिमी जिमी, पग घुंगरू, इंतहा हो गई जैसे कई गीत दिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। आज कवि और लेखक शिवमंगल सिंह सुमन की पुण्यतिथि है। उनका पहला कविता संग्रह हिल्लोल 1939 में प्रकाशित हुआ। उन्हें मिट्टी की बारात के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
Yes, and James Marshall Jimi Hendrix was born on this day 1942. He was an American guitarist, singer and songwriter. He is widely regarded as one of the greatest and the most influential guitarists of all time, and inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1992 as a part of his band, the Jimi Hendrix Experience. The institution describes him as arguably the greatest instrumentalist in the history of rock music. Let's listen in to his hit track, Hey Joe.
Hey Joe, where you going with that? Hey Joe, I said, where you going with that gun of yours?
And Horace, the Roman poet, who was one of the greatest Roman lyrical poets, his work, Odes, has had a lasting influence on European literature and poetry. His lasting influence is also seen in his catchy sayings like Carpe Diem and the impact of Ars Poetica, art of poetry or literary criticism. He is considered one of the Rome's greatest poets, praised for his skill with language, meter and poetic form. And we also remembering him today.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता सिंह और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।